लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम लोगों के मूल और स्मृति का प्रतिनिधित्व करने वाले विश्व के समस्त बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका अनुभव और ज्ञान युवाओं को भविष्य की ओर आशा और जिम्मेदारी के साथ देखने में मदद करे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवेंजेली गौडियम सुसमाचार की खुशी पर चर्चा कर रहे हैं। संत पापा फ्रांसिस ने सामाजिक धर्म शिक्षा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान विश्व में नवीन सुसमाचार प्रचार के संबंध में प्रेरितिक प्रबोधन एवेंजेली गौडियम सुसमाचार की खुशी प्रकाशित की। 24 नवंबर सन 2013 को प्रकाशित किए गए अपने इस प्रेरितिक प्रबोधन में संत पापा फ्रांसिस पूरी कलिसिया से यह आग्रह करते हैं कि हम सभी ख्रिस्तीय अपने जीवन में सुसमाचार के एक नए अध्याय की शुरुआत करें। वे कलिसिया को शिष्यों का एक समुदाय घोषित करते जो सदैव प्रेरिताई के कार्य हेतु बुलाई गई है। एवेंजेली गौडियम संत पापा फ्रांसिस के परम धर्माध्यक्षीय काल के विशेष मुद्दों पर प्रकाश डालता है, जहां हम ख्रिस्तियों का गरीबों के प्रति कर्तव्य, आर्थिक, राजनैतिक और अन्य कानूनी बातों के संबंध में उत्तरदायित्व का जिक्र पाते हैं। वे सामाजिक प्राथमिकताओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराते हुए कहते हैं, कैसे कोई बुजुर्ग गृह विहीन व्यक्ति की मृत्यु समाचार का हिस्सा नहीं बनता, लेकिन दो अंक शेयर बाजार का लुढ़क जाना समाचार का हिस्सा बन जाता है। अपने प्रेरितिक प्रबोधन के प्रथम अध्याय में संत पापा फ्रांसिस पल्ली की महत्ता पर जोर देते हैं, जो पुरोहितों और सामुदायिक खुलेपन के आधार पर प्रेरिताई की रचनात्मकता को एक अलग रूप प्रदान कर सकता है। वे प्रवचनों में कलिसिया के कार्यों, कलिसिया के अधिकारियों और समुदाय से आग्रह करते हैं कि वे स्थानीय पल्ली के क्रियाकलापों के संग अपने को संलग्न करें। वे धर्माधीक्षकों का अपने धर्म प्रांत के प्रति उत्तरदायित्व का जिक्र करते हैं। संत पापा कहते हैं कि अपने में भटकाव के भय से अधिक मैं सोचता हूँ कि भय से ग्रसित हम संरचनाओं के अंदर ही अपने आप में बंद होकर रह जाएंगे, जो हमें एक झूठी सुरक्षा प्रदान करती है। विधि व्यवस्था के नियम जो हमें कठोर न्यायकर्ता बनाते, हमारी आदतें जो हमें अपने में असुरक्षित हमें अपने में सुरक्षित रखती हैं, जबकि हमारे घर के चौखट में लोग भूखों मर रहे हैं, जिसके बारे में यीशु हमसे कहते हुए नहीं थकते, उन्हें खाने के लिए कुछ दो। संत पापा कहते हैं, क्योंकि मैं दूसरों को इन बातों को अपने दिनचर्या में लागू करने हेतु आह्वान करता हूँ, मुझे भी चाहिए कि मैं अपने परम धर्माध्यक्षीय काल में परिवर्तन के बारे में विचार करूं। श्रोताओं, ईश्वर के शब्द अपनी शक्ति में अवर्णनीय है। सुसमाचार हमें एक बीज के बारे में कहता है जिसे एक बार बोया गया है, यद्यपि किसान सोता रहता है। कलिसिया को शब्द की अनियंत्रित शक्ति स्वीकारने की आवश्यकता है, जो उन बातों को पूरा करती है जिनकी चाह वह रखती है, जो हमारी नियंत्रण और सोच विचार से परे है। कलिसिया का यीशु के संग निकटता यात्रा का एक सामान्य भाग है। सामुदायिकता और प्रेरिताई दोनों एक दूसरे के संग गहरे रूप में जुड़े हुए हैं। स्वामी के उदाहरण की निष्ठा अनुरूप यह कलिसिया के लिए अति महत्वपूर्ण है कि वह वर्तमान परिस्थिति में आगे बढ़ते हुए सबों के लिए सभी जगह में सभी परिस्थितियों में बिना हिचकिचाहट संकोच या भय के सुसमाचार की घोषणा करे। सुसमाचार की खुशी सबों के लिए है, इससे कोई भी अछूता या वंचित नहीं है। बेतलहम में चरवाहों के लिए स्वर्ग दूत ने इसी बात की घोषणा की, आप डरे नहीं, देखिए मैं आप लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार लाता हूँ जो सबों के लिए सुनाया जाएगा। प्रकाशना ग्रंथ की पुस्तिका इसके बारे में कहती है, पृथ्वी पर रहने वालों को हर एक राष्ट्र, वंश, भाषा और प्रजातियों को सुनाने के लिए उसके पास एक शाश्वत सुसमाचार था।
ये संदेश है, यीशु का प्रेम संदेश है, समता का ये संदेश है, सुख शांति का संदेश है, ये संदेश है।
श्रोताओं, कलीसिया जो अपने में आगे बढ़ती है वह प्रेरिताई कार्य में संलग्न शिष्यों का एक समुदाय है जो अपनी ओर से प्रथम कदम बढ़ाती, जो सहभागी होती और सहयोग करती, फल उत्पन्न करती और अपने में आनंदित होती है। सुसमाचार प्रचार करने वाला समुदाय अपने में इस बात से वाकिफ होता है कि यह यीशु ख्रिस्त हैं जो अपनी ओर से पहल करते हैं। ये वे हैं जिन्होंने हमें सर्वप्रथम प्रेम किया है। यही कारण है हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए साहसपूर्वक नेतृत्व के कार्यों को करते, दूसरों के पास जाते, उनकी खोज करते जो गिरे हुए हैं, चौराहों के किनारे खड़े और परित्यक्त लोगों का स्वागत करते हैं। ऐसे समुदाय अपने में करुणा की एक अनंत चाह रखती है जो अपने अनुभवों को पिता के अनंत करुणामय शक्ति से सुदृढ़ करती है। आइए हम अपनी ओर से थोड़ा और कोशिश करते हुए पहल करें और इसमें संलग्न हों। यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए, झुककर अपने शिष्यों के पैर धोने के द्वारा ईश्वर स्वयं सहभागी होते और अपने को भी संलग्न करते हैं। वे अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम अपने में धन्य होगे यदि तुम ऐसा करोगे। जब प्रेरितिक समुदाय अपने शब्द और कार्य के द्वारा लोगों के जीवन में सहभागी होता है तो यह दूरियों को कम करता, जरूरत पड़ने पर यह अपनी अवहेलना कराने में पीछे नहीं रहता या मानवीय जीवन का आलिंगन करता तथा दूसरों के पीड़ित शरीर का स्पर्श करता है जो स्वयं यीशु ख्रिस्त के हैं। सुसमाचार प्रचारक इस भांति अपने भेड़ों को सुगंध से पहचानता और उनकी भेड़ें उनकी आवाज को सुनने हेतु तत्पर रहती हैं। सुसमाचार प्रचार करने वाला एक समुदाय अपने में सहयोगी भी होता है, अपने लोगों के हर कदम में साथ खड़ा होता, चाहे वह कितना ही कठिन या लंबा क्यों ना हो। यह लोगों की चाहतों से वाकिफ होता और अपनी प्रेरिताई में स्थिर बना रहता है। सुसमाचार प्रचार अपने धैर्य में बना रहता और समय पाबंदी की अवहेलना करता है। यह ईश्वर से मिले उपहारों के लिए कृतज्ञवान बने रहता और फल उत्पन्न करता है। सुसमाचार प्रचार करने वाला समुदाय सदैव फल की चिंता करता है क्योंकि ईश्वर उससे यही आशा करते हैं कि वह फलहित हो। वह फल की देखरेख करता और जंगली पौधों से अधीर नहीं होता है। बोने वाला जब जंगली पौधों को फसलों के बीच में उगते हुए देखता तो वह नहीं भुनभुनाता या क्रोधित नहीं होता है। वह अपने में एक मार्ग की खोज करता जिसके फलस्वरूप शब्द को एक विशेष परिस्थिति में लेता और उनके द्वारा नए जीवन का फल उत्पन्न करता है, चाहे वह अपने में कितना भी अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जान पड़ता हो। शिष्य अपने को सदैव उस मार्ग में अग्रसर करते हैं जिसके द्वारा यीशु ख्रिस्त का साक्ष्य दिया जाए, चाहे इसके लिए उसे शहीद ही होना क्यों ना पड़े। यद्यपि वह ऐसे कार्य में शत्रु नहीं बनाता, लेकिन वह इस बात का ख्याल रखता है कि शब्द को स्वीकारना मुक्ति और नवीन रहस्य को प्रकट करता है। अंततः सुसमाचार प्रसारित करने वाला समुदाय अपने में खुशी से भरा होता है। वह यह जानता है कि अपने में किस तरह सदैव खुश रहा जाए। यह सुसमाचार प्रचार में लिए गए हर कदम कार्य में मिली छोटी सफलता का रसास्वादन करता है। खुशी में सुसमाचार का प्रचार धर्मविधि की सुंदरता बनती है। जिसके द्वारा हम अपने दैनिक जीवन में अच्छाई प्रसारित करते हैं। कलीसिया अपने में सुसमाचार का प्रचार करती है। धर्म विधि की सुंदरता द्वारा कलीसिया अपने को प्रसारित करती है, जो एक समारोह बनता और स्वयं के लिए नवीनता का स्रोत होता है। श्रोताओ, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवंजेली गौडियम पर एक चर्चा सुनी। हम इस पर अपनी चर्चा आगे भी जारी रखेंगे।
ये संदेश है, यीशु का प्रेम संदेश है, समता का ये संदेश है, सुख शांति का संदेश है, ये संदेश है।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने सभी ख्रिस्तों को संबोधित करते हुए प्रोत्साहन दिया है कि वे ख्रिस्तता की जड़ की ओर लौटें। उन्होंने 19 जुलाई को एक ट्वीट प्रेषित कर कहा, हमें ख्रिस्तता के मूल की ओर लौटना है, ईश्वर के प्रति प्रेम हमारे आनंद के स्रोत की ओर, जो हमें दुनिया के रास्तों पर चलने और हमारे पड़ोसियों का स्वागत करने के लिए भेजता है। यह सबसे सरल एवं सबसे सुंदर साक्ष्य है जिसको हम दुनिया को दे सकते हैं। कनाडा में संत पापा की आगामी तीर्थ यात्रा की विशेषता है मूलवासी लोगों के प्रति सामीप्य का ठोस भाव। वैटिकन रेडियो के संपादक अंद्रेया तोर्नेल्ली ने संत पापा की कनाडा यात्रा पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि संत पापा फ्रांसिस ने अपने करीब एक दशक के परमाध्यक्ष काल में अपनी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को कभी भी प्रायश्चित तीर्थयात्रा नहीं बतलाया। इसी शब्द का प्रयोग संत पापा ने रविवार 17 जुलाई के देवदूत प्रार्थना के दौरान की, जो हमें कनाडा में आगामी यात्रा की विशेषता को समझने में मदद देता है। सबसे पहले यह देश का दौरा नहीं है, न ही कैथोलिक समुदाय से मिलना इसका मुख्य उद्देश्य है, बल्कि यह मूलवासी लोगों के प्रति सामीप्य का ठोस भाव व्यक्त करता है जो वहां रहते हैं और जिन्होंने उपनिवेशवाद के परिणाम का कष्ट झेला है। उपनिवेशवाद की बुराइयों में से एक है मूलवासी लोगों की संस्कृति को समाप्त करना, जो तथाकथित आवासीय विद्यालयों में किया गया था। कई संस्थान थे जिन्होंने मूलवासी बच्चों को उनके परिवारों से अलग करते हुए कड़े अनुशासन के साथ शिक्षा देने और उनका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। ये स्कूल, जिनकी मृत्यु दर बहुत अधिक थी, कनाडा सरकार द्वारा स्थापित किए गए थे, जिन्होंने उन्हें वित्त पोषित भी किया था, लेकिन उनका प्रबंधन कार्तिक धर्म सामाजिक सहित ख्रिस्ते कलिसियाओं को सौंपा गया था। तोर्नेल्ली ने कहा कि चंगाई और मेल मिलाप की यात्रा कुछ समय पहले शुरू हुई है और यह मूलभूत कदम के रूप में मार्च और अप्रैल में रोम में मुलाकात के रूप में संपन्न हुए, जिसमें संत पापा फ्रांसिस ने फर्स्ट नेशन, मेतिस और इंसुइट दलों से मुलाकात की, पहले अलग अलग और बाद में एक साथ, तथा अतीत में जो हुआ उसके लिए खेद एवं लज्जा प्रकट किया। मूलवासी लोगों ने स्वागत किया गया और सबसे बढ़कर सुना गया महसूस किया, लेकिन उनकी तीव्र इच्छा थी कि संत पापा उनकी भूमि का दौरा करें और उनसे क्षमा मांगें। इस तरह संत पापा की यात्रा को समझने की कुंजी पूरी तरह प्रायश्चित के मनोभाव में निहित है, जो इसके उच्च बिंदुओं की विशेषता होगी। यह वही मनोभाव है जिसका सुझाव संत पापा बेनेडिक्ट सोलहवें ने 2010 में बाल यौन दुराचार के कलंक के लिए दिया था। उसी तरह संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने 2000 की जयंती में यादगारी के शुद्धिकरण का प्रस्ताव रखा था, जब उन्होंने उन लोगों द्वारा की गई गलतियों को पहचानने में साहस एवं नम्रता की मांग की थी जो ख्रिस्त नाम धारण करते हैं। इस विश्वास के आधार पर कि उस बंधन के कारण जो हमें रहस्यमय शरीर में एक दूसरे से जोड़ता है, हालांकि व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं है और ईश्वर के न्याय का अतिक्रमण नहीं करते जो सभी के हृदय को जानते हैं, हम उन लोगों जो हमसे पहले चले गए हैं उनकी गलतियों और दोषों का भार उठाते हैं। पीड़ितों और उनके परिवार वालों के जूते पर अपना पांव डालकर जानना कि किस तरह सुनना है, उनके दुखों को साझा करना है और उन्हें समझना, सामीप्य के मनोभाव से उत्तर देना और केवल ऐतिहासिक विश्लेषणों अथवा आंकड़ों के ठंडेपन पर निर्भर नहीं करना सचमुच ख्रिस्त देता है। अतः संत पापा फ्रांसिस येसु के नाम में कलीसिया के चरवाहे के रूप में मुलाकात और आलिंगन करने आ रहे हैं, जो विनम्रता प्रदर्शित करने और क्षमा मांगने में लज्जा महसूस नहीं करते हैं। संत पापा फ्रांसिस 24 से 30 जुलाई तक कनाडा की प्रेरित यात्रा करेंगे। संत पापा फ्रांसिस ने प्रार्थना की है कि पौत्र आत्मा समस्त अफ्रीकी कार्तिक ईश शास्त्री एवं प्रेरितिक नेटवर्क को प्रेरित करे तथा इस सप्ताह नैरोबी में हो रहे ईश शास्त्रियों, धर्म सामाजिक पुरोहितों, धर्म बहनों, लोक धर्मियों और धर्माध्यक्षों की सभा से आह्वान किया है कि वे आत्मपरख करें कि ईश्वर आज हमसे क्या चाहते हैं। संत पापा ने कहा कि आत्मपरख के लिए एक साथ आना कि ईश्वर आज हमसे क्या कह रहे हैं, यह पहले ही बाहर निकलने वाली अफ्रीकी कलीसिया का चिन्ह है। समस्त अफ्रीकी ईश शास्त्री एवं प्रेरितिक नेटवर्क को प्रेषित संत पापा के वीडियो को मंगलवार को प्रकाशित किया गया, जिसमें संत पापा ने सभा की सराहना की है और कहा है कि यह आशा का चिन्ह है कि ईश शास्त्री लोक धर्मी पुरोहित, धर्म सामाजिक, धर्म बंधु और धर्म बहने तथा धर्म अध्यक्षों ने एक साथ चलने की पहल की है। संत पापा ने मंगलवार को द्वितीय अखिल अफ्रीकी कार्तिक सम्मेलन के बारे जानकर खुशी जाहिर की। सम्मेलन अफ्रीकी देश केन्या की राजधानी नैरोबी में 19 से 22 जुलाई को आयोजित की गई थी। संत पापा ने कहा, आज ईश्वर हमसे जो कह रहे हैं उसे पहचानने के लिए एक साथ आना न केवल चुनौतीपूर्ण जरूरतों को निश्चित रूप से पूरा करने के लिए, लेकिन अफ्रीका के सपनों, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक और कलीसियाई सपनों को साकार करना पहले से ही बाहर जाने वाली अफ्रीकी कलीसिया का चिन्ह है। संत पापा ने उन्हें अपना प्रयास जारी रखने का प्रोत्साहन दिया। संत पापा ने अफ्रीका में अपनी यात्रा की याद करते हुए कहा कि वे उन लोगों के विश्वास एवं लचीलापन से लगातार प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने 2015 में मध्य अफ्रीकी गणराज्य की यात्रा की थी, अफ्रीका हमेशा विस्मित करता है। अफ्रीकी लोगों के पूर्वजों की प्रज्ञा हमें उस बुलावे का स्मरण दिलाती है कि पर्वत कभी नहीं मिलते किंतु लोग मिलते हैं। संत पापा ने सम्मेलन के सभी प्रतिभागियों को निमंत्रण दिया कि वे एक साथ आगे बढ़ें, एक दूसरे का साथ दें, बढ़ें और मदद करें। उन्होंने आग्रह किया कि प्रज्ञा ई शास्त्र जैसा कि वे प्रस्ताव रखते हैं गरीबों के लिए करुणा का सुसमाचार हो तथा लोगों एवं समुदायों को उनके जीवन के संघर्षों, शांति एवं आशा में उन्हें बल प्रदान करे। अपनी आशीष प्रदान करने के पूर्व संत पापा ने पौत्र आत्मा से प्रार्थना की कि वे उन्हें प्रेरित करें और इस सम्मेलन से एक रास्ता बने जिसकी कलीसिया को जरूरत है, मिशनरी, पारिस्थितिक मन परिवर्तन, शांति, मेल मिलाप और पूरे विश्व के बदलाव का रास्ता। श्रीलंका के कार्तिक धर्माध्यक्षों ने राजनीतिज्ञों से अपील की है कि वे अपनी भिन्नताओं को दरकिनार कर एक राष्ट्रपति एवं एक प्रधानमंत्री पर सहमत हों जो लोगों का भरोसा जीतें। कोलंबो पेज की रिपोर्ट अनुसार श्रीलंका के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि सभी दल अपनी राजनीतिक भिन्नता एवं एजेंडा को दरकिनार करते हुए इस समय एक अंतरिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए एक समझौता करें जो ईमानदार हो और सभी का विश्वास जीत सके। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।